आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 4। ये कविता है जिसका नाम है आत्मकथ्य। इसके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद। तो इस कविता में लेखक ने एक तरह से अपनी आत्मकथा का वर्णन भी किया है और एक तरह से वो कारण भी व्यक्त किए हैं कि वो असल में अपनी आत्मकथा, अपने जीवन की सच्चाई लोगों को क्यों नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने कविता पूरी पढ़ ली थी और आज हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो आप लोग पेज नंबर 29 पर आ जाइए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कवि के जीवन में बहुत सारी दुखदायक घटनाएं हुई हैं। अपने सरल और सहज स्वभाव के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया और कवि को लगता है कि यदि वो लोगों से अपनी दुर्बलताएं कहेंगे, अपनी कमियां बताएंगे, तो लोग उसका आनंद उठाने के सिवाय और कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। दूसरा, उन्हें ये भी लगता है कि उनके जीवन में इतना कुछ महान नहीं है जो वो लोगों को बताएं, जिससे लोगों को सीखने को मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास जो भी जीवन में उन्होंने कुछ अच्छे पल बिताए उसकी यादें ही बची हैं जिसके सहारे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और अब वो ये सब किसी और के साथ नहीं बांटना चाहते हैं। इसीलिए कवि अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। आत्मकथा क्या होती है? अपनी कथा यानी अपने जीवन की कहानी कहना, अपने जीवन के कुछ प्रसंगों को, कुछ घटनाओं को बताना। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि क्यों कहते हैं कि अभी समय नहीं है सुनाने का? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कवि को लगता है कि अभी आत्मकथा सुनाने का उचित समय नहीं है। कवि ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि कवि को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है, सिर्फ कुछ सुखों के उसके पास क्षण थे लेकिन और कुछ उसे नहीं मिला है, बल्कि उनका जीवन दुख और अभावों से भरा हुआ है, गागर रीति की तरह, यानी एक खाली घड़े की तरह उनका जीवन है। और कवि को अपने जीवन में जो भी पीड़ाएं या जो दुख दर्द मिले हैं वो उसे अकेले ही सहना चाहते हैं, और उन्होंने सब कुछ अकेले ही सहा है। तो जीवन के इस पड़ाव पर जब वो काफी आगे बढ़ गए हैं, उनकी व्यथाएं, उनकी पीड़ाएं जब थक कर सो गई हैं, यानी कवि ने जैसे तैसे अपनी वेदनाओं से मुक्ति पा ली है, तब अगर वो दोबारा आत्मकथा लिखने लगेंगे तो उनकी जो वो सारी पीड़ाएं हैं वो जागृत हो जाएंगी, है ना। अब वो दोबारा वो सब नहीं चाहते हैं, ना ही लोगों के सामने अपने कुछ ऐसे महान कर्म व्यक्त कर सकते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। इसी कारण से वो कहते हैं कि मैं अपनी कथा कहूं उससे बेहतर है कि मैं दूसरों की सुन लूं, मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है और इसीलिए अभी समय नहीं है कि मैं कुछ कहूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो कवि की जो जीवन यात्रा है वो किस भरोसे चल रही है? सिर्फ जो उन्होंने सुख के कुछ क्षण, कुछ पल बिताए हैं अपने जीवन में, उसी भरोसे उनकी पूरी यात्रा व्यतीत हो रही है। कवि ने हमेशा जो सपने देखे प्रेम प्राप्त करने के या सुख को प्राप्त करने के, वो उन्हें कभी मिल ही नहीं पाए हैं। इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि जो उनकी जीवन यात्रा है वो बहुत ही कष्टदायी रही है और वो इससे थक चुके हैं। और जैसे रास्ते में किसी यात्री को पाथेय जो होता है वो सहारा देता है, है ना, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, प्रेरित करता है, उसी प्रकार जो उनके सपने हैं या सुख के थोड़े बहुत पल हैं, वो जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, उन्हीं के भरोसे कवि जीवन में आगे बढ़ पा रहा है या आगे बढ़ने की प्रेरणा पा सकता है। इसीलिए स्मृति को, स्मृति यानी यादें जो होती हैं, उसको कवि पाथेय मानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 पर। भाव स्पष्ट कीजिए। दो पंक्तियां हैं क और खा, आपको भाव स्पष्ट करने हैं। पहला क देखते हैं, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इसका भाव स्पष्ट करना है तो इसमें हम बताएंगे कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप लिखेंगे, कवि कहते हैं कि जिस प्रेम के उन्होंने सपने देखे थे, है ना, जिस प्रेम के सपने देखकर वो खुश होते थे, वो उन्हें कभी मिले ही नहीं। जिसकी उन्होंने कल्पना की थी अपने प्रेम की, अपने सुख की, वो उन्हें कभी नहीं मिला। इसीलिए उन्हें दुनिया में सब कुछ एक छलावा, दिखावा, धोखा लगता है। उनके जीवन हमेशा सुखों से वंचित रहा। जैसे वो कहते हैं कि जिस भी चीज को मैंने सुख समझा और जब मैं उसे पाने चला, आलिंगन करना यानी पाने चला, उसे गले से लगाने चला, तो तभी मेरा सपना टूट गया और वो मुस्काकर मुझे चुड़ाकर वो सुख मुझसे दूर भाग गया, यानी मेरे साथ क्या हो गया, छल हो गया। ऐसे ही अगली पंक्तियां देखिए ख में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इन पंक्तियों में कवि अपने प्रेयसी या अपने जो उनकी प्रेमिका थी उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपनी प्रेयसी या अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जो प्रेममयी भोर अनुरागिनी उषा, यानी जो उषा होती है सुबह एकदम भोर का समय, वो जो प्यार से भरी हुई सुबह है उसमें जो लालिमा होती है, क्योंकि सूरज उगना शुरू ही हुआ होता है, तो जो लालिमा होती है वो कहाँ से आती है, उस भोर के पास, उस सुबह के पास वो लालिमा आती है मेरी प्रियसी के गालों से। अरुण कपोल, अरुण यानी लालिमा, सूरज की लालिमा, और कपोल यानी गाल। ठीक है, तो उनकी प्रियसी के गाल जो थे इतने सुंदर थे, इतनी लालिमा थी उसमें, कि भोर जो होती है वो भी वो लालिमा उसके गालों से लेती है। यानी कवि कहना चाह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका का, उनकी प्रेयसी का जो मुख है, उसका जो सौंदर्य है, वो सुबह से भी बहुत बढ़कर है। सुबह भी उसके सामने फीकी लगती, क्योंकि उस भोर को इतना सुंदर लगने के लिए सौंदर्य उनकी प्रेमिका से उधार लेना पड़ता है। इतना सौंदर्य उस भोर के पास, उस सुबह के पास होता नहीं है जितना कि उनकी प्रेमिका के पास है, वो उन्हें उससे उधार लेना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 5, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। ये जो पंक्ति दी है इसके माध्यम से बताइए कवि क्या कहना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों से आशय यह है कि कवि कहना चाहते हैं कि जो उनका निजी प्रेम है, है ना, उनके जो सुख भरे क्षण हैं जो उन्होंने अपनी प्रियसी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, चांदनी रातों में जो पल बिताए थे, उसकी जो कहानी है ना, उज्जवल गाथा यानी उसकी प्रकाशित जो कहानी है, वो बहुत ही पवित्र है और उसी का प्रकाश है जो उनके जीवन के अंधकार को दूर कर रहा है, उनको जीने का सहारा दे रहा है और इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसीलिए कवि की जो वो मधुर स्मृतियां हैं, यानी जो मीठी यादें हैं, वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सुख के पल केवल उन्हीं के पास तक सीमित रहें, है ना। वो जो खुशी जो महसूस करते हैं उन पलों को याद करके, है ना, जो पवित्रता उन पलों में है, जो निजता है, निजीपन की सिर्फ मेरी बात है, मुझ तक रहे, वो सबके साथ ना बांट के बस अपने तक ही रखना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं उनकी गाथा कैसे गा दूं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। ये जो कविता है इसकी काव्य भाषा की आपको विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, पहली चीज आप लिखेंगे इसकी भाषा कैसी है, खड़ी बोली। ठीक है, तो आप लिखेंगे, प्रसाद जी ने इस कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। दूसरा, अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए, कविता में सजीवता लाने के लिए उन्होंने बहुत से नए और सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया है, नए बिंबों का, प्रतिबिंबों का, प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, है ना। और अगर आप देखेंगे तो विडंबना या प्रवंचना जैसे थोड़े से क्लिष्ट शब्द जो अक्सर हमें रचनाओं में देखने को नहीं मिलते हैं, नए भी हैं, थोड़े से कठिन भी हैं, ये शब्द भी प्रसाद जी की विशेषता है कि वो थोड़े से क्लिष्ट शब्दावली के धनी हैं, है ना। बहुत ही सरल भाषा ना लिखकर थोड़ी सी क्लिष्ट शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, यानी थोड़ी सी कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरा, उनके कविताओं में अलंकारों का प्रयोग भी है ना, जैसे रूपक और अनुप्रास अलंकार जगह जगह पे देखने को मिल जाता है, कविता के दौरान बताया था। अगली चीज आप लिखेंगे कि छायावाद की कविताओं की जो विशेषता रही है वो प्रसाद जी की कविताओं में दिखती है, जैसे जो मानवेतर पदार्थ हैं, है ना, यानी जो निर्जीव पदार्थ हैं उनको मानव की तरह प्रस्तुत करना, उनको सजीव दिखाना। जो निर्जीव पदार्थ हैं जैसे मन रूपी भौरा, है ना, एक तो यहाँ रूपक अलंकार है, भौरे को मन रूपी बताया गया है, और दूसरा कि मन को चलायमान दिखाया है कि वो चलता है, भौरे की तरह उड़ता है, स्थिर नहीं है। ऐसी चीजें, मतलब बहुत सी ऐसी बातें कही प्रसाद जी ने जिससे जो निर्जीव चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनमें भी सजीवता का एहसास हो जाता है, वो भी मानव की तरह गतिविधियां कर्म करते हुए प्रतीत होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, देखिए पेज नंबर 29 पर ही हैं हम लोग। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? आपको ये बताना है कि वो कौन सा सुख था जिसके बारे में कवि बार बार बात कर रहे हैं, कि कौन से सुख का उन्होंने स्वप्न देखा था, कौन सा ऐसा सपना था जो पूरा नहीं हो पाया है, है ना, या किस सुख के सपने को वो बताना चाहते हैं। आप लिखेंगे कवि ने जिस स्वप्न सुख के स्वप्न को देखा था जिसके बारे में वो कविता में बात कर रहे हैं, वो उन्होंने अपनी प्रेमिका के रूप में व्यक्त किया है। और वो कहते हैं कि ये जो मेरी प्रेमिका है ना, ये सपने में मेरे पास आती है, लेकिन जैसे ही मैं इसे छूना चाहता हूँ, आलिंगन में लेना चाहता हूँ, आलिंगन यानी गले लगाना, है ना, आलिंगन में लेना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ, तो ये मुस्कुराकर दूर चली जाती है, यानी मेरा जो सपना है वो वहीं का वहीं टूट जाता है। और तो कवि कहते हैं कि जो वो उनकी प्रेमिका है, जब वो उनके पास आने लगती है, उसे वो छूना चाहते हैं, अपने आलिंगन में लेना चाहते हैं, यानी गले लगाना चाहते हैं, तो तभी वो मुस्कुराकर दूर चली जाती है, यानी कवि का जो सपना है वो टूट जाता है और वो उस सुख से वंचित रह जाते हैं, जिस सुख को वो प्राप्त करना चाहते हैं उससे वो वंचित रह जाते हैं। क्योंकि कवि ने आत्मकथ्य जो कविता है इसमें लिखा भी कि अपने जीवन में जिस सुख का सपना उन्होंने देखा था वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने बहुत से सपने देखे थे कि मेरे जीवन में यदि प्रेम होगा तो मैं ऐसे रहूंगा, ऐसे करूंगा उसके साथ, सारी चीजें जो उन्होंने सोची थी वो वास्तव में पूरी नहीं हो पाई, है ना, उनकी प्रेमिका उन्हें नहीं मिल पाई, उनकी प्रेमिका का प्यार उन्हें नहीं मिल पाया, वो स्पर्श उन्हें नहीं मिल पाया, जो एहसास वो उसके साथ महसूस करना चाहते थे वो नहीं मिल पाए, कुछ यादें हैं, कुछ पल जो उन्होंने साथ में बिताए थे वही उन्हीं के सहारे अब कभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो यही मानते हैं कि सुख का अनुभव उन्हें नहीं हुआ है, अभी भी उनके जीवन में अभाव है, कुछ कमी है, दर्द है एक, लेकिन वो उसके साथ जीना तो सीख चुके हैं लेकिन खुश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपके प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। अब आते हैं हम रचना और अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक होता है वो होता है आपकी कल्पना शक्ति, सृजन शक्ति या रचना शक्ति को बढ़ाने के लिए। आप कितने इमेजिनेटिव हो सकते हैं, कितने अच्छा सोच सकते हैं, कितना क्रिएटिव हो सकते हैं ना, कितने रचनाशील हो सकते हैं। तो इसमें 3 प्रश्न है। पहला देखो, प्रश्न 8 पढ़ते हैं। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कविता पढ़ के आपको क्या लगता है, जो कवि हैं यानी जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा था, यानी वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, ये आपको अपने शब्दों में बताना है। तो आप लिखेंगे कि कविता पढ़ के हमें मालूम होता है कि प्रसाद जी एक बहुत ही सरल, साधारण, सीधे से व्यक्ति रहे होंगे। उनके जीवन में छलावा या दिखावा जैसी चीजों का कोई महत्व नहीं था। वे अपने जीवन की जो कमियां थी, जो सुख दुख थे, अपनी दुर्बलताओं को लोगों के सामने या समाज के सामने प्रस्तुत करने में विश्वास नहीं रखते। उन्हें लगता है कि अगर हम अपने कमजोरियों को लोगों को दिखाएंगे तो हम केवल उपहास का पात्र बनेंगे, यानी लोग हमारा बस मजाक बनाएंगे, है ना, हमें कोई और लाभ उससे नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कुछ पंक्तियों को पढ़ के कि उनके जीवन में बहुत सी पीड़ाएं, बहुत सी वेदनाएं रही हैं, उन्होंने बहुत से कष्ट और दुख सहे हैं, है ना। ये सारी तो बातें हमें कविता पढ़ के पता चल जाती हैं, बाकी हमें ये पता चलता है कि वो यथार्थवादी प्रवृत्ति के हैं, मतलब जो वास्तविकता है उसे वो स्वीकार करते हैं, किसी भी प्रकार के दिखावे में जीना नहीं चाहते, जो जैसा है वैसा है। अगर उन्हें लगता है कि मुझे ये चीजें सामने नहीं रखनी है तो नहीं रखनी है, ये मेरी अपनी निजी चीजें हैं, मुझे अपने तक रखनी है, तो वो उसे अपने तक ही रखते हैं। साथ ही वो एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति भी हैं। क्यों विनम्र व्यक्ति होंगे? क्योंकि वो इतने श्रेष्ठ कवि हैं लेकिन अपने आप को महान नहीं मानते। वो इनकार करते हैं कि मैं ना तो इतना महान हूं, ना तो मेरा व्यक्तित्व इतना महान है, ना मेरे कृतित्व यानी जो मेरे काम है ना वो इतने महान है कि लोगों को कुछ प्रेरणा मिल सके, मैं किसी को कुछ सिखा सकूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप चाहे तो पैराग्राफ में ये आंसर लिख सकते हैं और चाहे तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि ये प्रसाद जी कैसे व्यक्ति रहे होंगे। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, प्रसाद जी एक सरल साधारण सीधे से व्यक्ति रहे होंगे। दूसरा पॉइंट, उन्हें जीवन में छलावा या दिखावा जैसे बातों में विश्वास नहीं था उनके लिए। तीसरा लिखेंगे, संबंधों का बहुत महत्व रहा होगा। चौथा, वो अपने सुख दुख या अपनी कमजोरियों को अपने तक रखना पसंद करते थे, समाज में प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था ऐसा करने से वो हंसी का पात्र बन जाएंगे या उपहास का पात्र बन जाएंगे, लोग उनका मजाक बनाएंगे। ठीक है, पांचवा आप लिखेंगे, कवि का जीवन बहुत ही वेदनाओं से, दुख से, पीड़ाओं से भरा हुआ रहा होगा, उन्होंने बहुत से कष्ट या दुख भी सहे होंगे। छठा आप लिखेंगे, वो यथार्थवादी प्रवृत्ति के हैं, वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, है ना, जो जैसा है उसे वैसा बताने में विश्वास रखते हैं। सातवां, वो अपने निजी जीवन को निजी ही रहना देना चाहते हैं, उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते। आठवां लिखेंगे, वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एक वो श्रेष्ठ कवि थे लेकिन फिर भी अपने आप को महान नहीं मानते, श्रेष्ठ नहीं मानते और कहते हैं मेरे व्यक्तित्व या कृतित्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पढ़कर लोगों को प्रेरणा मिले या लोग कुछ सीख सके, इसलिए आत्मकथा कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रचना और अभिव्यक्ति का दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? जो बहुत से महान व्यक्ति है ना, समाज सेवक जो रहे हैं, नेता रहे हैं, या अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां, हीरो हीरोइंस है ना, या क्रिकेटर्स हैं, या कोई भी खिलाड़ी हैं और खेलों के, बहुत से लोगों की आत्मकथाएं लिखी गई हैं, तो आपको बताना है कि आप किसकी पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कि गांधी जी की है आत्मकथा, है ना, सत्य के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और इसके अलावा आप अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा पढ़ सकते हैं, वो युवाओं को बहुत ही प्रेरित करती है ना। इंदिरा गांधी जी के बारे में पढ़ सकते हैं। आजकल तो आत्मकथा लिखने के अलावा बायोपिक्स बन रही हैं, बायोपिक्स यानी पिक्चर्स भी, मूवीज बन रही हैं, जिसमें जैसे अभी हाल में धोनी की मूवी हमने देखी है ना, मैरी कॉम की मूवी देखी, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं इनकी मूवी, संजय दत्त की बायोपिक आई। तो ऐसे ही आप में से बताना है आप लोगों को कि आप किसकी आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे, एक व्यक्ति, और ऐसा क्या है जो आप उसको जानना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे कि मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ, मैं उनके जीवन को और करीब से जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे उनके जैसा व्यक्ति बनना है, उन्होंने अपने जीवन में क्या संघर्ष किए या क्या अच्छा झेला, क्या बुरा झेला, ये सारी बातें जाननी है जिससे मैं अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा निखार सकूं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको एक व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति देखना है और उसकी आत्मकथा क्यों पढ़ना चाहते हैं ये भी बताना है। आत्मकथा पढ़ चुके हैं अगर किसी की, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मैंने इसकी आत्मकथा पढ़ी थी और मैंने इस वजह से पढ़ी थी, मैं ये जानना चाहता था और मुझे पढ़ने के बाद ये अच्छा लगा या ये बुरा लगा, कुछ भी हो वो आप बता सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10, और आपके अंदर जिसमें से कोई लेखक या लेखिका छुपी होगी उसको जगाने के लिए ये प्रश्न दिया गया है। वो कहते हैं कि आत्मकथा लिखने के लिए आपको कोई महान व्यक्ति होना, बहुत बड़ा व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। क्यों? आत्मकथा क्या होती है? अपनी कथा, हमारी कहानी, हमारे जीवन की कोई ऐसी घटना या प्रसंग या पूरे जीवन की यात्रा कैसी, ये सब हम इसमें वर्णित कर सकते हैं। तो आत्मकथा तो सबकी होगी ना, सबका जीवन है, सबकी अपनी अपनी कहानियां होती हैं। तो ऐसे ही आपको भी अपने बारे में कुछ लिखना है, वो आत्मकथात्मक शैली में होना चाहिए। जैसे गुड़गांव की एक घरेलू जायका है बेबी हालदार, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी आलो अंधारी, है ना। तो ऐसे वो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति तो थी नहीं, हालांकि आत्मकथा लिखने के बाद वो काफी प्रसिद्ध हो गई, पर वैसे वो प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उनकी आत्मकथा पढ़ी, सराही, लोगों को पसंद आई कि उनके जीवन में ऐसा कुछ था कि हाँ हमें जानना चाहिए। ऐसे ही आप भी कुछ लिख सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में जब आप कुछ लिखेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें मैं का प्रयोग होता है ना, क्योंकि आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो मैं शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि एक पेज कम से कम आप अपने बारे में कुछ लिखें, चाहे तो अपने जीवन को वर्णन कर दीजिए जीवन का, या किसी घटना के बारे में लिख दीजिए। तो शुरू कैसे करेंगे? मैं एक ऐसा इंसान हूं, या मेरा जन्म यहाँ पे हुआ था, या मेरा जन्म इस सन में हुआ था, मेरे घर में, मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन हैं, मेरे माता पिता का ये नाम है, हमारे पारिवारिक स्थिति काफी अच्छी है या हमारी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, है ना। मेरे पापा रोज काम पर जाते हैं, वो मुझे पढ़ने इसीलिए भेजते हैं, मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ या कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, है ना। मेरे आदर्श अब्दुल कलाम जी हैं, जो युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहते थे। ऐसे करके आप कुछ भी, है ना, या आपके जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना रही, कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि लिखने लायक है, ये ठीक है। ठीक है, तो ये भी आपका एक होमवर्क असाइनमेंट हो जाएगा। आपको कम से कम एक पेज तो खुद के बारे में लिखना ही है। आप इससे ज्यादा लिखेंगे तो और अच्छी बात होगी, कम से कम इतना तो लिखना ही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं पाठेतर सक्रियता। तो पाठेतर सक्रियता में दो बिंदु हैं। पहला देखिए, किसी भी चर्चित व्यक्ति का अपनी निजता को सार्वजनिक करना या दूसरों का उनसे ऐसी अपेक्षा करना सही है, इस विषय के पक्ष या विपक्ष में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना होगा? एक डिबेट करना होगा, यानी वाद विवाद प्रतियोगिता। तो कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उन्हें दो समूह में बांट लीजिए, एक जो पक्ष में बोलेंगे और एक विपक्ष में। क्या बताना है? जो चर्चित व्यक्ति हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जैसे बड़े बड़े हीरो हीरोइन है ना, एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस, और या नेता हैं, या कोई सेलिब्रिटी बिजनेसमैन है, कोई भी जो बड़े लोग हैं, उनका अपना अलग निजी जीवन होता है। तो आपको क्या लगता है, उनका जो निजी जीवन है, क्या उसे उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि हमारा रहन सहन ऐसा है, हमारा खान पान ऐसा है, हम ये कपड़े पहनते हैं, हमारे परिवार में ये लोग हैं, हम ऐसा करते हैं, हमारे जीवन में ये हुआ था, वो हुआ था, कुछ भी, जो भी अपनी निजी चीजें हैं वो पब्लिक को बतानी चाहिए या नहीं? तो आधे लोग बोलेंगे कि हाँ बताना चाहिए, और क्यों बताना चाहिए आप अपने कारण बताएंगे, और बाकी आधे लोग उसके विपक्ष में बोलेंगे, यानी उन्हें लगेगा, जिन्हें लगता हो कि उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लोगों के सामने अपनी निजी बातें नहीं बतानी चाहिए, और ना ही बाकी आम लोगों को कुछ अपेक्षा करनी चाहिए कि नहीं आप भी हमें अपने निजी जीवन के बारे में बताइए। तो ये सही और गलत क्या है आपको अपने विचारों से लिखना होगा। ठीक है, समझ गए? दो समूह बनेंगे, दो ग्रुप्स। पहला ग्रुप जो कहेगा कि हाँ ये सही है, तो उसके कारण देगा कि क्यों सही है, और दूसरा ग्रुप जिसको लगेगा कि ये सही नहीं है तो वो उसके कारण देगा। आप अपने शिक्षक के सामने ये क्रियाकलाप, ये जो एक्टिविटी है, इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, क्या है? बिना ईमानदारी और साहस के आत्मकथा नहीं लिखी जा सकती। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग पढ़कर पता लगाइए कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि आत्मकथा बिना ईमानदारी और साहस के नहीं लिखी जा सकती। तो अपनी कथा कहने के लिए साहस क्यों चाहिए, है ना? क्यों चाहिए? क्योंकि आपके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है आप दूसरों के सामने बता पाते हैं या नहीं, उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए होगी, है ना? और ईमानदारी भी। ईमानदारी क्यों? सपोज आपके जीवन में कुछ आपने गलती करी है ना, जैसे आपने चोरी करी, तो जब आप आत्मकथा लिखेंगे तो आप उस घटना का वर्णन करते हैं या नहीं? अगर आप बाकी बातें बताएंगे लेकिन उस बात को छुपा जाएंगे, यानी आपने ईमानदारी से नहीं लिखी, है ना? आपने आत्मकथा ईमानदारी से नहीं लिखी। और अगर आप बताते हैं, क्योंकि आप ईमानदार रहना चाहते हैं अपने काम में, तो आप अगर बताते हैं कि हाँ ये मैंने ऐसी घटना हुई थी कि मैंने एक बार चोरी की थी, तो इसके लिए आपको साहस चाहिए होगा, है ना? हिम्मत चाहिए होगी कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इसीलिए बिना ईमानदारी और साहस के आत्मकथा वाकई में नहीं लिखी जा सकती। आपको साहस भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए अपनी अच्छी बुरी बातें बताने के लिए, और ईमानदारी भी चाहिए, क्योंकि अगर ईमानदारी से नहीं लिखी जाएंगी, कुछ बातें छुपा के आत्मकथा लिखी जाएगी, तो वो अधूरी होगी या फिर गलत होगी, है ना? क्योंकि सच को छुपाना भी झूठ के ही बराबर होता है। अब वो कह रहे हैं कि गांधी जी की जो आत्मकथा है, मैंने अभी आपको नाम बताया था ना थोड़ी देर पहले, क्या है? सत्य के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये आपको अगर कहीं से पढ़ने का मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए, चाहे तो अपने शिक्षकों की मदद से पढ़िए, या अपने घर में मम्मी पापा या बड़े भाई बहन से बोलिए, है ना? या इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं तो वहां से पढ़िए, और फिर इसको पढ़कर देखिए क्या विशेषताएं, यानी गांधी जी ने कैसे अपनी आत्मकथा लिखी, इसमें क्या क्या बातें उन्होंने बताई। और जब आप ये पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का भी एहसास होगा कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ लिखी है ना? कि जहां पे जो चीज बतानी चाहिए वो सब बताया है, कुछ भी नहीं छुपाया, जो उनकी गलती थी या जो उनकी अच्छी चीजें थी दोनों बताई हैं, और साहस और हिम्मत के साथ भी लिखा है ना। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, लेकिन जो भी उन्होंने जैसे काम किए उन्होंने लिखे, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो सत्य है उससे बड़ा कुछ भी नहीं, यानी सच के सच से आगे और कुछ भी नहीं जीत सकता। हमें हमेशा सच के साथ रहना चाहिए। सच का जो महत्व है वो गांधी जी ने बहुत ही अच्छे से अपनी इस आत्मकथा में समझाया है। जो भी व्यक्ति यह आत्मकथा पढ़ेगा उनकी, तो वो कहीं ना कहीं प्रेरित हो जाएगा सच बोलने के लिए, है ना? उसे लगेगा कि अगर हम सच बोलेंगे तो कुछ गलत होगा ही नहीं, है ना? हमें हिम्मत भी मिलती है और हमें किसी भी डर से फिर रहना नहीं पड़ता, ठीक है? और आप इसके अलावा, गांधी जी के अलावा और भी किसी की आत्मकथा पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ सकते हैं। आपका पाठ यहाँ पे पूरा होता है। मिलते हैं अगले ऑडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।